नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 3 नए आपराधिक कानूनों पर आधारित न्याय संहिता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि घुसपैठियों को पकड़कर देश से बाहर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने राज्य में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में सहयोग नहीं किया। श्री शाह ने कहा कि अब भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार में राज्य में कानून का शासन स्थापित हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। विदेशी ध्वज वाले 2 जहाजों से संबंधित घटना के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इन जहाजों पर सवार सभी 22 नाविक सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क में है।
2 ships which are foreign flagged. 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्ताव के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, AI, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का एक अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की। श्री नड्डा ने कहा कि ये विरोध न तो छात्रों के हित में है और न ही न्याय के लिए। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टर्डम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।